ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कानून के शासन का सिद्धांत सरकार की प्रमुख नीति रही है। जिनेवा में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा है कि सरकार महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है, जिस पर पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भी जोर दिया गया था। चुनाव संचालन के बारे में डॉ जयशंकर ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना की। डॉ जयशंकर ने कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फाइलीमैन यैंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर बधाई दी। डॉ जयशंकर ने कहा कि महासभा का नेतृत्व विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए नेतृत्व में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1747 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 1561 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे कल मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल कॉलेज में एक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यभर के 434 आईटीआई में संविधान मंदिरों का उद्घाटन करेंगे। ये संविधान मंदिर संविधान की शिक्षा और भारत रत्न डॉ बीआर अम्बेडकर के विचारों के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उपराष्ट्रपति नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टॉवर का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने गेहूं के भाव में बढ़ोतरी और जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं जमा करने की सीमा को संशोधित किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए संशोधित गेहूं स्टॉक सीमा अब 2000 टन होगी, जो पहले 3000 टन थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के कथित हमले की जांच के सिलसिले में पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। ये तलाशी मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर और जालंधर में की गई। इन सभी स्थान आरोपी खालिस्तानी नेता अमरजोत और उसके सहयोगियों से जुड़े थे। स्पेन में फिलिस्तीन और इसराइल के लिए अलग अलग 2 देश पर बातचीत करने और गजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव डालने के लिए यूरोपीय, अरब और इस्लामी देशों के प्रतिनिधियों ने मैड्रिड में मुलाकात की। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरेस ने कहा कि युद्ध अब रुकना चाहिए। कांगो में एक सैन्य अदालत ने 37 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। उनमें 3 अमरीकी, 1 ब्रिटिश, 1 बेल्जियम और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। उन्हें तख्तापलट के प्रयास में भाग लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया। म्यांमा में हाल के दिनों में टाइफून यागी के कारण आई बाढ़ में 33 लोगों की मौत हो गई है और 2,30,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। म्यांमा सेना ने कहा है कि देशभर में कुल 34 टाउनशिप बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भारत की तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल सेमीफाइनल पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के अदनान मौलाना और इंद्रा सारी जमील की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।